ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप एक ऐसे पैनल डिस्कशन में कहें या ऐसे सत्र में बैठे हैं, ये सेशन जो है हमारा कॉल ऑफ टाइम बिल्डिंग सस्टेनेबल सिस्टम, तो इस के लिए जो हमारे अतिथिगण हैं मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे आदरणीय ओपी गोविंद लाल दरक जी, हमारी माननीय देवयानी दीदी जी और हमारे आदरणीय रोहित भाई जी, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि स्टेज पर आए। अभी हम सभी कुछ देर के लिए प्रभु स्मृति में बैठेंगे ताकि 2 मिनट हम उस प्रभु को भी आमंत्रित करें इस सत्र के लिए। मैं हमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है, मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी ना कभी ये आर्किटेक्ट का काम किया है और बचपन से ना कभी बिल्डिंग बनते देखा है, लेकिन मुझे एक बहुत खुशी की बात ये होती है कि बचपन से जब से इस परमात्मा घर से जुड़ी हुई इस भगवान के एक बगिया से जुड़ी हुई हूँ, तो जब किसी घर को देखती थी तो सोचती थी कि ये बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची कैसे खड़ी हो जाती है ना, एक एक ईंट जोड़ के उसके फाउंडेशन को इतना मजबूत बना के उसे एक मनुष्य के एक परिवार के रहने के लायक बनाना ये आसान काम नहीं है। और जब मैं बाबा के घर से जुड़ी और मानव के जीवन को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाना, एक शिखर तक पहुंचाना, उसकी आंतरिक उन्नति कर उनके द्वारा एक ऐसी नई दुनिया बनवाना, ये मैंने भगवान से सीखा है। कैसे हमारे छोटे छोटे कमियों भरे संस्कारों को हटाकर आर्किटेक्ट क्या करते हैं, जो चीज की जरूरत होगी उसे उस कार्य में लगाते हैं और जिसकी जरूरत नहीं होती उस एरिया को काट देते हैं ना, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परमात्मा जो सुप्रीम आर्किटेक्ट बैठा है वो इस कार्य को कितनी शिद्दत से कर रहा है, और ये हमारे जो माननीय अतिथि यहाँ बैठे हैं ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दो रोहित भाई जी और हमारी देवयानी दीदी जी तो दोनों कार्य कर रही हैं, साथ साथ हमारे आदरणीय दरक जी भी एक ऐसे श्रेष्ठ कार्य से जुड़ चुके हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि जब दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, परमात्मा का भी और मानवता की सेवा का भी, तो वो कार्य कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से 30 वर्षों से जुड़ी हुई दीदी जी, राजयोग मेडिटेशन करती हैं ये, इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई मना जितनी भी आर्किटेक्ट की पढ़ाई होती है सारी कंप्लीट किया ऑनर्स के साथ, और ये पढ़ाई के साथ साथ ये कबड्डी प्लेयर भी रही है दीदी, और स्विमर भी अच्छी रही है ताकि वो भी सारे कार्य कर सके। और उन्होंने अपनी अर्बन आर्ट कंपनी जो आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनर की फर्म है, 1978 में उन्होंने स्थापन की है। और आपको ये चीज बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इन्होंने पूरे देश भर में बहुत सारे बीके सेंटर्स भी डिजाइन किए हैं, और उसमें से मुख्य शांति सरोवर हैदराबाद का रिट्रीट सेंटर है। और इस रिट्रीट सेंटर को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसे ही, क्योंकि हम ग्रीन बिल्डिंग तो कहते हैं, लेकिन वो क्या है, दीदी ने बना के दिखाया, लेकिन अब हम अपने आप को कैसे बनाएं ऐसा, आज इनके वक्तव्य से हम सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है आजकल सस्टेनेबिलिटी पे बहुत सारी चर्चा हो रही है, इन एवरी फील्ड सस्टेनेबल लाइफ अपने को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। अपने G20 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी उसके ऊपर बहुत भर दिया था। अब परिस्थिति ही ऐसी हुई है, नेचर में जब हम जाएंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या हमारी नेचर की भी क्या स्थिति हो गई है। देखो तो जाए कहाँ, प्रदूषण ही प्रदूषण भरा है यहाँ वहाँ, है ना। मुझे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब मिट्टी की वो खुशबू सूम करते हम करते थे। हाँ, आपको भी अगर किसी को याद आता होगा, अब वो है कहाँ, अब ना वो मिट्टी है, हमने तो टाइल्स में उसको दफना भी दिया है। वो बचपन के हमारे लम्हे हम कहाँ अब ढूंढे, वो बचपन की यादें कहाँ हमें मिलेगी, वो खुशबूदार सुगंध अब हमें अनुभव कब होगा, क्योंकि मिट्टी को हमने मिट्टी में ही दफना दिया। ऐसी हमारी हालत हो गई। और ये सब, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, हम सभी हैं, आप हैं, मैं हूं, सभी इसके लिए जिम्मेवार है। और इसकी कॉल ऑफ द टाइम जो है सस्टेनेबिलिटी की, क्यों हमें कॉल ऑफ द टाइम करना पड़ा, सस्टेनेबिलिटी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देना पड़ा, बता सकते कोई? कॉल ऑफ द टाइम, द पोल्यूशन ऑफ ऑल द फाइव एलिमेंट्स, इट हैज इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट ह्यूमन लाइफ अलॉन्ग विद द प्लांट एंड एनिमल लाइफ ऑल्सो हैज बीन थ्रेटन्ड। डोंट यू थिंक, इज इट ट्रू? एंड दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम, दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट हैज कम टू एवरीबडीज माइंड दैट देयर शुड बी अ सस्टेनेबिलिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। व्हेन आई केम, आई वॉज कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, ऑन द एयरपोर्ट देर वॉज अ बिग बोर्ड ऑफ NMDC, सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग इज ऑल्सो सस्टेनेबल। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ वी हैव टू बी अ सस्टेनेबल। हमारे लाइफ में तो मालूम ही है आपको कि क्या क्या है, वॉट वी हैव टू डू फॉर टू बी सस्टेनेबल। अब जैसे घर में भी देखिए, बच्चा हम माँ बाप होते हैं तो माँ बाप क्या करता है, पहले बच्चों के लिए, और वाई इट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, नाउ ऑल्सो वी आर फेसिंग, एंड इन द फ्यूचर जनरेशन फॉर देम वी हैव टू कीप ऑल दिस फाइव एलिमेंट्स इंटैक्ट। उनका हमने इतना डिग्रेडेशन कर दिया है, इतना डिग्रेडेशन कर दिया कि हम ही उसकी वजह से सफर हो रही है। अब देखिए, व्हाट इज द एम ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, अर्ली एक्शन टू प्रिवेंट एनवायरमेंट डिटोरिएशन एंड मेक अवर अर्थ अ हेल्दी प्लेस टू लिव फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा। और होता क्या है कि हमारी जो जनरेशन है उसने बहुत सारा इस्तेमाल कर लिया है, अभी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या रखें? Do you want your children or future generation to live in the polluted air? Everything is polluted. Do you want like that? If we stay like this, if our lifestyle is like this, then everything will be spoiled. All these five elements will be spoiled. See now, what is the sustainability? First, we should understand what is the sustainability. It is the approach to create living environment that is self-sufficient, ecologically balanced and culturally stimulating. It deals with the things without harming or affecting natural resources or five elements. है ना? Now what we are doing? We are harming all the elements. It is the wise use of natural resources to ensure enough natural resources left for the future generation. And it is environment friendly process. Now benefit of sustainability, as I told you, it is for the future generation, even for us also. So it helps to reduce, to slow down the destruction of natural elements, natural resources further. Future generation can enjoy the facilities we are enjoying now. So one can enjoy and connect with the nature. आजकल देखा है बच्चों को नेचर मालूम ही नहीं है एक्चुअली. कोरोना में देखा ना हमने क्या हुआ था. वी वेर इन साइड बट ऑल द एनिमल्स पशु पक्षी सब बाहर आ गए थे और उनको देखे हमें भी खुशी होती थी ना. बच्चों ने तो कभी किसी प्राणियों को देखा भी नहीं होगा, उस वक्त उन्होंने देखा है ना, क्योंकि हमने पोल्यूशन कम कर दिया, हमारा ड्राइविंग कम हो गया, एयर पोल्यूशन कम हो गया, उनके लिए हवा अच्छी हो गई, वो बाहर आने लगे है ना. जो बंदिश थे वो खुले हो गए और खुले जो थे वो बंदिश हो गए थे उस वक्त है ना. तो निसर्ग ने भी दिखा दिया. तो व्हाट इज द आर्किटेक्ट्स रोल नाउ इन दिस, बिकॉज दिस सेशन इज अबाउट द कॉल ऑफ टाइम बिल्डिंग सस्टेनेबल सिस्टम फ्रॉम आर्किटेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट इज माय रोल, बिकॉज एज ए प्रोफेशनल ऑन द पर्सनल लेवल इट इज डिफरेंट, बट फ्रॉम द प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज माय रोल और व्हाट इज द आर्किटेक्ट्स रोल इन दिस, बिकॉज बिल्डिंग इंडस्ट्री इज अ बिग इंडस्ट्री. See, building industry plays a very significant role in affecting the quality of the environment. Architects can give proper guideline to prevent deterioration of environment, enriched by better planning and designing for better environment. अब इसमें designing and planning of the building, इसमें बहुत सोच है. अभी हमें हवा चाहिए, हम pollute कैसे करते हैं हवा, ये सोचना चाहिए हमें. How we are polluting the air? Can anyone tell me? सिंपल हमारे घर से चलिए आप, इंडस्ट्रियल वो तो बड़ा हो गया, फ्रॉम द फैमिली यू स्टार्ट. ओके, हैविंग एसीज, जहां देखें हम एसी के सिवा चलता ही नहीं हमारा है ना. छोटा बच्चा भी हो उसको भी एसी चाहिए, एसी से क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए है ना, फ्रिज का ही पानी पियेंगे, उससे क्या हो रहा है, हवा में हम हवा को हम पोल्यूट कर रहे है ना, हवा की क्वालिटी हम बिगाड़ रहे. अब देखो मेरे पर्सनली मेरे घर में तो एसी ही नहीं है एंड यू नो उसके इतने नुकसान है एसी का. एक्चुअली हमारी आजकल वो किडनी प्रॉब्लम्स क्यों स्टार्ट हो गई है, क्यों कोई बता सकता, बहुत सारे किडनी पेशेंट्स हो गए, ट्रांसप्लांट कर रहे फिर भी फायदा नहीं हो रहा, थोड़े दिनों के बाद छोड़ के चले जाते हैं. हाँ क्यों, हाँ बस करेक्ट. पहले जमाने में हम पंखे से ऐसी हवा लेते थे है ना, किसी को किडनी का प्रॉब्लम ही नहीं था. आज देखिए तो इतने किडनी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, किडनी के ऊपर हम इतना प्रेशर दे रहे हैं कि जो शरीर में जो गंदगी है वो निकालने के लिए सिर्फ दो किडनी काम नहीं कर सकती, उसके लिए अपनी स्किन इज अ थर्ड किडनी. अगर पसीना उसकी तरफ से भी निकलेगा तो हम किडनी का प्रेशर कम कर सकते हैं. तो एसी लगाने से क्या हो जाएगा, हमें पसीना ही नहीं आता है ना, तो पसीना न आने की वजह से किडनी फेलियर होते है ना, ज्यादा काम पड़ने से किडनी का फेलियर होता है. और फिर क्या करते हैं, फिर वो आजकल देखा है ना अपने किडनी पेशेंट्स को, वो गर्म पानी में बिठाते हैं फिर वो पसीना आता है ना, उससे तो अच्छा है ना घर के एसी बंद कर दो आप है ना. वो वहां निकालते पैसे भी जाते हैं वहां तो निकालते पसीना निकालते, पर घर आके वापस वैसे ही रहते हैं, फिर क्या फायदा हुआ है ना. तो हाँ अच्छा वो नहीं मुझे मालूम. यस होल साइकिल फर्स्ट, बट दे कैन इम्प्रूव, दे कैन रिमूव द एसीज, दे कैन हैव. देखो हमारा अभी आजकल काम भी इतना कम हो गया है ना, शारीरिक कष्ट भी नहीं होते है ना, तो पसीना कैसा निकलेगा एक तो ऊपर से एसी होता है, हम बैठे रहते हैं आराम से, क्या हमें कुछ काम ही नहीं है शरीर को, तो फिर कैसे हमारी किडनी फेल्योर नहीं होगा? तो देखो, आर्किटेक्ट्स कैन गिव प्रॉपर गाइडलाइंस टू प्रिवेंट डिटोरियरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड एनरिच बाय बेटर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग. अभी प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए मैं बताती हूँ. बेटर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, अगर आपके घर का ये बेटर प्लानिंग कैसा होता है, घर में हम रहते हैं हमें क्या चाहिए? वेंटिलेशन चाहिए, लाइट एंड वेंटिलेशन. ओके, हाँ सनलाइट चाहिए. लेकिन हम क्या करते हैं? हाँ देखो, सन एंड विंड डायरेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. अभी हम कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं ना, तो वहां हम साइट पे जाते हैं और साइट पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस दिशा से हवा बहती है. तो यूजुअली अपने पास क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट हवा की दिशा है. नॉर्थ ईस्ट वाली आएगी हवा तो वो कैसी रहती है, वो कैसी रहती है, और साउथ वेस्ट वाली हवा कैसी रहती है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाली हवा बहुत, क्यों हम बोलते कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ दरवाजे होने चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, ठंडी हवा आती और वहां से सूरज की जो किरणें आते हैं, कौले कौले यानी कोमल कोमल किरणें सवेरे की उस दिशा से आती है, वो हमारे घर में दैट इज बेनिफिशियल टू अस, है ना. साउथ वेस्ट अगर कोई बोलेगा ऐसे चाहिए तो यू फर्स्ट आस्क देम व्हाई. क्योंकि बहुत सारे वास्तुशास्त्री बोलते हैं ना कि इस दिशा में करो, ये तोड़फोड़ भी बहुत करते हैं. नाउ टुडे इफ यू कम टू नो अबाउट ऑल दीज एंसर्स, यू विल नो द व्हाई इट शुड बी देयर एंड व्हाई इट शुड नॉट बी देयर. फिर आप अपना घर भी वैसा प्लानिंग में बना सकते. तो प्लानिंग अगर वाइजली करेंगे आप, तो हमें पंखे लगाने की जरूरत नहीं. और अगर हम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड में खिड़की दरवाजे यहां रखेंगे, तो अपने आप लाइट, और नॉर्दर्न लाइट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर, नॉर्थ लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग राइटिंग एक्सेट्रा, है ना, वो उसमें ग्लेयर नहीं रहता है. साउथ का लाइट या वेस्ट का लाइट वो ग्लेयर, अभी देखो आप ग्लेयर देखो आप, है ना. तो नॉर्थ ईस्ट लाइट में इसीलिए यहां पे खिड़कियां हमेशा होनी चाहिए. वो हमें स्टडी वगैरह करते हैं ना हम लोग, तो ये साइड में टेबल वगैरह रखे, प्रकाश उधर से आएगा तो हमें तकलीफ नहीं होगी. तो ये वास्तुशास्त्र भी इसमें, इसी के लिए उसको वास्तुशास्त्र भी बोलते हैं. एक्चुअली वास्तु पंडित जो रहते हैं उन्हें ये पूरा ज्ञान नहीं होता, तो वो बोलते हैं और हम सुन लेते हैं. वैसा मत कर जगे, अभी आपको ये पूरा मालूम पड़ जाएगा किस दिशा में खिड़कियां होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, किस दिशा में टॉयलेट होने चाहिए, किस दिशा में नहीं होने चाहिए. अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट से अगर हवा आ रही है तो हम टॉयलेट्स कहां रखेंगे? इस दिशा में रखेंगे क्या? क्योंकि उस दिशा में रखेंगे तो हवा से अंदर आएगी ना बदबू. तो नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं रखते और साउथ वेस्ट में भी नहीं रखते. और नॉर्थ दिशा से लाइट आता है इसीलिए नॉर्थ साइड एकदम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखते. नॉर्थ साइड इसीलिए छोड़ते कि हमें लाइट अच्छी आनी चाहिए दिन भर की. ठीक है. ऐसे एसी नहीं होने चाहिए, कूलर. यू कैन हैव द कूलर, नो ह्यूमिडिटी का उधर प्रॉब्लम है. या कोर्टयार्ड से हवा आती है अंदर. वही हो रहा है. बट मोस्टली नाउ डेज दे आर डूइंग बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू दिस वास्तु, मोस्टली बिकॉज पीपल आर गोइंग टू वास्तुशास्त्री, सो एंड दे आर परचेसिंग द बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू वास्तु, सो द बिल्डर्स आर बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु. आप बिल्डर है ना, देखिए अगर मैं बोलूं हिमाचल प्रदेश में आप नॉर्थ ईस्ट में ही खिड़कियां बड़े दरवाजे रखे तो इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, तो हवामान देख के ही हमें करना है ना. नॉट स्टडी, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल में भी मैं बोल रही हूं. अगर हिमाचल प्रदेश में ठंडी हवा आएगी उधर से, हमारे घर में अगर ठंडी ठंडी हो सब.
उसको मैं बताऊंगा, मैं कंफ्यूज हूं तो बताऊंगा.
ओके, व्हाट इज नाउ वास्तुशास्त्र? वास्तुशास्त्र इट विल चेंज लिटिल बिट, बट दैट आर्किटेक्ट हैज टू सी, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम ओडिशा, सो पर्सनली विल हैव टू सी दैट प्रॉब्लम. इसीलिए तो आर्किटेक्ट हर सिटी में है कि वहां जाके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, है ना. वहां का आर्किटेक्ट, उसे मालूम है कि साल भर में कैसी हवा होती है, कैसा करना चाहिए, सो ही विल डू इट अकॉर्डिंगली. मैं जिस देश वी आर नॉट रिजिड. सी, बट वास्तुशास्त्र क्या है कि अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी एंड सराउंडिंग्स वी हैव टू सी ह्यूमन नीड्स ऑल्सो. सो योर पॉइंट हैज कम हियर. सन एंड विंड डिरेक्शंस, जियोपैथिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेस, सोलर सिस्टम, एस्ट्रो फोर्सेस एंड मैंस लाइफ सिस्टम. अभी मैंस लाइफ सिस्टम में वो ये आता है कि दिन भर की हमारी दिनचर्या क्या होती है, दिन भर में हम क्या करते हैं, किस रूम का हमें ज्यादा उपयोग होता है ना, यूज करते हैं, किस रूम को किस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, मॉर्निंग कौन सी रूम हमें इस्तेमाल करते हैं हम, है ना. मॉर्निंग में हम बाहर जाते, वरांडे में जाते हैं या पूजा वगैरह करते हैं, बच्चे होते स्टडी करते हैं, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए, है ना. इस हिसाब से वो एक्चुअली प्लानिंग करना चाहिए, है ना. रात के टाइम क्या होता है, दिन में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, तो वो किस तरफ से हवा गर्म आती है, दोपहर को आती है, तो उस दिशा में क्या कर. इसीलिए तो होता है ना कि उसको जस्ट शेड करो या जस्ट ऑब्स्ट्रक्ट दैट, वो गर्मी है जो आती है उसको ऑब्स्ट्रक्शन दे दो ना. इसलिए तो बोलते हैं ना कवर्स वगैरह साउथ एंड वेस्ट में लगा दो, तो गर्मी के लिए ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना. जो तपत होता है, क्योंकि वॉल भी अगर हम हाथ लगाएंगे तो वो भी तो गर्म होती है ना, तो उनकी गर्मी हमारे रूम में आ जाती है, तो उनको ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होगा. वहां पे अगर हम दीवार बांधे, सॉरी कबर्ड बांधे, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना वो आने में, है ना. और मास्टर बेडरूम भी उस तरफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जब मास्टर होता है घर का, वो दिन भर काम करके रात में तब तक उसकी रूम भी ठंडी हो जाती है ना. तो एवरीथिंग इज सो साइंटिफिक एंड एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू सन एंड विंड डायरेक्शन. हाँ, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं और तोड़फोड़ करते रहते हैं. अब देखो, वास्तु, इसीलिए मैं बोल रही कि वास्तु एम्स टू बैलेंस बिटवीन द होम एंड द कॉस्मोस. इट डील्स विद द लॉज ऑफ नेचर एंड देयर इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ. सो इट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्प्स अवर सस्टेनेबिलिटी, इजंट इट. सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग, और ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग फेनोमेना इसीलिए निकला हुआ है सस्टेनेबिलिटी की वजह से. इज वन सच स्टेप अहेड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. देखो, दीज फाइव एलिमेंट्स एवरीबडी नोज, एंड दीज अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस, दीज फाइव एलिमेंट्स, अवर बॉडी इज ऑल्सो मेडअप ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स. ओके, अगर हम इनको प्रदूषित करेंगे तो आजकल हमारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है ना. नवजात जो शिशु होता है उसमें भी बीमारियां इतनी होती है, क्यों? ये तो पांच ही एलिमेंट से ही बना हुआ है ना उसका भी शरीर. अगर वो निरोगी होंगे तो वो बच्चा, होने वाला बच्चा भी निरोगी होगा, है ना. देखिए, क्लाइमेट इंक्लूड्स विंड, रेन, सन, मून, अर्थ, प्लांट, एंड इट इंक्लूड्स फाइव एलिमेंट्स, नेमली अर्थ, वाटर, फायर, विंड एंड स्पेस. सो कोऑर्डिनेटिंग देयर मूवमेंट्स क्रिएट्स बैलेंस्ड environment which ensures health and happiness. Our body is also made up of five elements, as I said, and the energies created by all these five elements, if not properly organized, they create disturbance, they create diversion, fear and instability. इसीलिए हमें वो देखना चाहिए कि how we can coordinate, how we can balance them, so that we will be happy, we will be healthy, and we will have a good environment. So we can't change the behavior of these five elements. Can we change? We can't. So we have to adopt them suitably. Isn't it? Now see, any form on the earth that creates concentration and dispersion of cosmic and earth energies, it radiates positive or negative energy. Okay. The cosmic energy coming from northeast, as I told you, provides positive cosmic energy to the structure, whereas southwest gives rise to negative energy. And we should conserve the positive energy. We should allow the positive energy to enter our house and negative energy to be prevented. How will we prevent then? As I told you, reduce the number of openings from that side, have the wardrobes. So, and then automatically your house will be a little cooler, isn't it? And that you will not need light and fans anymore. If you have, just, लेकिन अभी क्या हो रहा है मालूम हम बताते हैं लेकिन पंखे लगा पंखे सॉरी पर्दे इतने लगा देते कि रूम में अंधेरा ही हो जाता है फायदा क्या हुआ हम सी आर्किटेक्ट्स विल डिजाइन इट प्रॉपरली लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल आप लोग कैसे करेंगे इसके ऊपर डिपेंड है ना प्राइवेसी नहीं रहती तो हमेशा थोड़ी चाहिए अपने को प्राइवेसी है ना देखिए नहीं नहीं लेकिन हर रूम अभी देखो ड्राइंग रूम जब मॉर्निंग सन आता है तब आप खोल के रखो ना आप लगाओ पर्दे भले लेकिन मॉर्निंग सन के टाइम हवा आने के टाइम आप खोल के रखो पर्दे जब आपको लगे ऐसा तब बंद कर दो है ना लेकिन हमेशा आप ऐसे बंद करके रखोगे तो वो खिड़की दरवाजे का फायदा ही नहीं होता जो हवा आएगी नहीं आपके अंदर आप हमेशा एसी लगा के रखेंगे और फिर अपनी तबीयत भी खराब करते रहेंगे सी लार्ज ओपनिंग्स लाइक बिग विंडोज एंड डोर्स वी बरांडाज बालकनी दे शुड बी प्रोवाइडेड ऑन ईस्ट एंड नॉर्थ क्योंकि वहां की हवा भी आती ठंडी कूल ब्रीज आता है स्मूथ एयर है ना और सन दैट टाइम मॉर्निंग सन रेज भी डी विटामिन मिलता है ई विटामिन में ए विटामिन मिलता है वो विच इज बेनिफिशियल कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि जो हमें दवाइयों से भी नहीं मिलते सो नेचुरल कूलिंग सिस्टम अच्छा वो ये जो है पॉन्ड्स वगैरह नॉर्थ साइड में क्यों रखते हैं क्योंकि हवा वहां से आती है ब्रीज आता है तो वो हमारे घर में आता है तो ठंडक पहुंचाती है दिलों को भी ठंडक पहुंचाती है शरीर को भी ठंडक पहुंचाती है द नेचुरल कूलिंग सिस्टम दिस इज द नेचुरल कूलिंग सिस्टम विच रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सो इट इज एन एनर्जी सेविंग मेजर सो दिस एज टू द सस्टेनेबिलिटी सी द ग्रीन कवर कैन एक्ट है ना हम आजू बाजू थोड़ा सा ऐसा ग्रीनरी अगर है हमारे पास तो इट ऑल्सो एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर मेकिंग द स्पेसेस कूलर फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स अराउंड द हाउस एंड द राइट प्लेसेस लेकिन आप बड़े बड़े पेड़ अगर ईस्ट साइड में लगा देंगे नॉर्थ साइड में लगा देंगे तो इंस्टेड ऑफ दैट यू पुट इट ऑन द वेस्ट साइड साउथ साइड है ना तो फिर जो हार्श सन रेज आते हैं ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे एंड आगे नॉर्थ और ईस्ट में क्या श्रब्स वगैरह छोटे लगा दें Afternoon sun sends infrared rays which are detrimental to health. It will obstruct them. So, Now sometimes unbearable heat radiations come from south and west side. So therefore smaller lesser as already I told you. And phir isiliye storerooms wahan us side mein rakhte hai. Wardrobes, storerooms, cupboards. They are placed on the west and south side. So it acts as a buffer. So automatically it will reduce the heat emission. Now factors in sustainability. What are the factors? Renew, recapture, redesign. And renew, what renew? Energy by wastewater. And this everybody knows nowadays. STP plant wagara. So rainwater harvesting. Now in every, I think big flats also, big systems also, they are having the rainwater system and STP plants. Ab ye apne जो गडकरी साहब है गडकरी है ना हाँ उन्होंने वही एसटीपी से वो वाटर से कितने पैसे कमाए है ना दैट इज एक्चुअली वेस्ट बट फ्रॉम दैट ही हैज अर्न क्रोर्स एंड क्रोर्स और गवर्नमेंट को कितना फायदा हो गया है उसकी वजह से है ना बेचा उन्होंने पानी आई थिंक टर्बाइन्स वगैरह के लिए वो पानी भी एंड दैट स्वेज ऑल्सो Sewage is also as a manure, no? So it is very useful thing. So nothing is to be wasted. अब यहाँ पे भी इस कैंपस में भी आप देखेंगे हमारी जहाँ पे भी बड़े कैंपसेस हैं वहाँ एसटीपी प्लांट है. हियर ऑल्सो यू विल सी एसटीपी प्लांट इन ऑल अवर बिग प्रीमाइसेस वी हैव द एसटीपी प्लांट एंड इवन द सोलर एनर्जी इज ऑल्सो वी आर यूजिंग. सी नाउ द रीडिजाइन एंड कॉन्जर्वेशन. अच्छा रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अभी क्या हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम क्या कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी जाएगा क्या. इट विल रिचार्ज करते. See, this rainwater recharges the underground water. है ना. अगर पानी ही नहीं गया तो कैसे चार्ज होगा. वॉट हाँ आजकल वही हो रहा है ना. वो इसीलिए मैंने बताया कि मट्टी को हमने मट्टी में मिला दिया. ठीक है. तो रीडिजाइन एंड कंजर्वेशन दीज प्लेसेस नाउ वी हैव टू यूज देम री यूज देम री यूजिंग रीडिजाइनिंग दैट कंजर्वेशन. पैलेसेस बोल रहे हैं आप होटल्स में निर्माण हो रहे ना पैलेसेस को दे आर कन्वर्टिंग इन टू होटल्स दे आर यूजिंग एंड डोनेट. दिस इज ऑल्सो पर्सनल ऑल्सो यू कैन डोनेट थिंग्स. अभी बिल्डिंग में क्या 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 डोनेट करते. हमारे शांति सरोवर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे स्टोन्स दैट वॉज अ क्वारी ग्रेनाइट क्वारी. तो वो खान से जितने भी स्टोन्स निकले थे वो हमने फाउंडेशन में भी इस्तेमाल किए. वो कंकड़ होते वो भी इस्तेमाल किए हैं. स्टोन ऐश थी वो भी हमने सीमेंट में मिला के इस्तेमाल की. सो वी हैव यूज्ड ऑल द मटेरियल फ्रॉम देयर दैट प्लेस एंड यूटिलाइज्ड इन अवर. सो दैट इज व्हाट इज वी गॉट अनयूज्ड आइटम्स इन द यूजेबल थिंग. सो दिस इज रिड्यूस रिसाइकल रीयूज रिकवर एंड री मैन्युफैक्चर. री मैन्युफैक्चरिंग में ये भी होता है कि पुराने जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो जब तोड़ते हैं तो उनके बड़े पिलर्स होते हैं कभी ग्रिल्स होते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस्तेमाल नहीं करते दैट वी कैन यूज इन टू अदर बिल्डिंग्स इन द प्रिपरेशन ऑफ. एंड स्टील का तो है ना री मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है. सो दिस इज एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी. फिजिकल इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट makes the person withstand the odds of the various situations in life and physical environment helps to develop and strengthen the spiritual. So we do not want nature to be further deteriorated. And a generation to suffer from the crisis created out of shortage of natural resources because of us. Because of our misbehaving with the nature. The problem of scarcity of natural resources is because of human greed, selfishness, है ना. All this ego, anger, jealousy, और मुझे ही चाहिए मेरी तीन चार पीढ़ियों के लिए चाहिए वो जो greed होती है ना उसकी वजह से ये problems निर्माण हो गए हैं. Parents earn more and this greed has no limit. So human mind has not have any control on their vices. So unless these vices are controlled, from where will we get the power? As you know, the power we get from the supreme power station. है ना. लेकिन उस कैसी पावर लेनी वो तो थ्रू मेडिटेशन ओनली वी कम टू नो. कुछ भी करने के लिए परिवर्तन करने के लिए हमारा माइंडसेट इतना हो गया ऐसा कि हम कुछ चाहते ही नहीं. ठीक है ये दूसरों के लिए है. हम सोचेंगे एसी तो हम लगाएंगे बाकी वो बंद करे भले. दूसरों के लिए सब कुछ है मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं तैयार ही नहीं हूं परिवर्तन के लिए. लेकिन ये परिवर्तन कैसे होगा जब मेरे में पावर ही नहीं है कमी है शक्ति की परिवर्तन शक्ति की कमी है तो मैं परिवर्तन नहीं हो सकती. और इसी के लिए ये मेडिटेशन उपयोगी होता है. तो टू बी सस्टेनेबल ऑल्सो वी रिक्वायर मेडिटेशन टू बी डन फॉर ऑल दीज थिंग्स इन द टू ब्रिंग अ चेंज इन अस. फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग अ चेंज इन अस देन वी कैन ब्रिंग द चेंज इन टू द नेचर एंड दैट विल बी फ्यूचर जनरेशन. इट विल बी beneficial for the future generation. Thank you very much. Om Shant.
बहुत बहुत धन्यवाद देवयानी दीदी जी का. जैसे उन्होंने कहा कि सारी चीजों का सार क्या है मेडिटेशन. सिस्टम तो बहुत है लेकिन उस सिस्टम को कंप्लीट करने का आधार है हमारा मेडिटेशन. तो चलिए दो मिनट हम एकदम साइलेंस में सारी बातों को हटा के मन को एकदम शांत कर लीजिए. और अपने को प्रभु के हवाले कर दीजिए। आज मुझे अपने इस पूरे सिस्टम को ठीक करना है। एकदम शांत अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें, अपने मस्तक की ओर ब्रिकुटी के मध्य में मैं एक चमकता सितारा आप उस सितारे को देखें, महसूस करें, मैं शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप सुख स्वरूप मैं आत्मा फील करें इस सुख को शांति को आहा मेरे शरीर के एक एक अंग में शांति सुख की किरणें उसे स्वस्थ कर रही है, मजबूत कर रही है। अब अपने आप को देखें कि मैं उस परम शक्ति परमात्मा के समीप परम धाम में इस पूरे जीवन को सिस्टम से सुचारू रूप से चलाने की पूरी शक्ति वो पिता परमात्मा मुझे दे रहा है। फील करें जैसे एक पिता अपने बच्चे को पांव पर खड़ा कराता, ऐसे मेरा मुझे सशक्त मजबूत स्थिर बना रहा है। उसका वरद हस्त अपने मस्तक पर महसूस करें, उसकी छत्र छाया महसूस करें, और अपने मन में दोहराएं मैं सदा सुरक्षित हूं, स्थिर हूं, सशक्त। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय रोहित भाई जी, आप प्रोप्राइटर स्टूडियो सिंप्लिसिटी एंड टीम लीडर डॉट इंडिया लिमिटेड दिल्ली से हैं, और आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इस विषय में, मैं आमंत्रित करती हूँ।
ओम शांति। अभी तक हम जो सुन रहे थे, मैं इसको थोड़े से अलग एंगल से आपको समझाता हूँ। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग योर प्रेजेंट रिसोर्सेज टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट हैम्परिंग देयर डीड्स। एंड इसके लिए इट इज नॉट ओनली अबाउट आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल मैनेजमेंट, क्योंकि आज की डेट में आर्किटेक्चर भी मटेरियल मैनेजमेंट की तो बात करता है, बट वी हैव टू बी गुड हैंडलर्स ऑफ द मटेरियल एज वेल, एंड दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी रोल स्टार्ट्स। दिस फॉर आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आई नो दैट आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, बट द चेयर डजंट नो दैट आई एम सिटिंग ऑन इट। वी आर बेसिकली कॉन्शियस बींग्स। हम सोच सकते हैं कि मेरे आसपास ग्रीनरी नहीं है तो ग्रीनरी होनी चाहिए, मेरे आसपास पानी ढंग से हार्वेस्ट नहीं हो रहा है, सूखा पड़ता है तो हमको हार्वेस्ट करना चाहिए। तो इट्स वी हु आर हैंडलिंग द एलिमेंट्स अराउंड। बट इफ देर इज अ फ्लॉ इन अवर बेसिक थिंकिंग, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी, इसको हम लोग एक आर्किटेक्चर के अंदर, देर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी, बिल्डिंग क्लाइमेट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स करती है उसकी एक बेसिक नॉलेज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं समझता कि कितने लोग ऐसे यहां पे हैं, चाहे पढ़ी लिखी जेंट्री है, मैं तो आपको फील्ड की बात बताता हूं कि पढ़ी लिखी जेंट्री भी नहीं जानती कि आर्किटेक्ट एक्चुअली क्या कर रहा है, अनपढ़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, बिकॉज दिस इज टोटली आउट ऑफ देयर एजुकेशनल सिस्टम। एक समय ऐसा होता था कि जब मुगलों का टाइम तक भी लोगों को बताया जाता था कि आपको घर कैसे बनाने हैं, लेकिन ये सारी चीजें आज की डेट में एजुकेशन से ही आउट है। आज की डेट में अगर कोई घर बनाने के लिए देखेगा तो आपको यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, हजार रुपए में यह नक्शा बना लीजिए, एक अच्छा सा वॉक थ्रू बना करके दिखा देंगे, एंड दीज थिंग्स आर बींग प्रोमोटेड बाई हुम वी कॉल एज क्वैक आर्किटेक्ट्स। हाँ, आई मीन देर आर सेवरल थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिल्डिंग को ही ठीक से हैंडल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी क्वैक के पास कभी भी मत जाइए। अगर कोई क्वालिफाइड आर्किटेक्ट होगा उसका काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप उनसे मांग लीजिए, मांग करके काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की साइट से टैली कर लीजिए कि ये एक्चुअली जेन्युइन आर्किटेक्ट है भी या नहीं है, क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल। कोई भी ठेकेदार अपने आप को आर्किटेक्ट लिख देता है अपने लेटर हेड पे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जहां तक फिर बात आती है मटेरियल मैनेजमेंट की, अच्छा माइंडसेट तैयार करने के लिए हमको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर तो डेफिनेटली फोकस करना ही होगा। होता क्या है कि आज की डेट का जो आर्किटेक्चर है, द बिल्ट एनवायरनमेंट अराउंड अस, इट इज, आप देखिए कि एक ऐतिहासिक समय थे जबकि राजाओं के किले होते थे और सारी नगरी उसी के अंदर बसी हुई होती थी, वो किला ही उसको प्रोटेक्ट कर लिया करता था। तो उस टाइम के अंदर आर्किटेक्ट्स का रोल क्या होता था, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप देखिए हुआ क्या है कि एवरीथिंग हैज ओपनड अप। कहने को तो हमने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लिए, बट वी हैव बिकम सच बैड मास्टर्स कि वी हैव बीन मोर ऑफ इंपीरियलिस्ट इन नेचर। हम चाहते हैं कि हम आज ये इतना पूरा हो गया, अब और लें, अब और लें, अब और लें, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई लगाम ही नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी हमको ये सिखा देती है कि हमको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। एक तरफ तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना लेते हैं और फिर दूसरी तरफ उसको पूरी तरह से निस्तो नाबूद करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट एक तरफ ये भी है और उसको खत्म करने वाली डेवलपमेंट भी मौजूद है। इन सब की माई बाप डेवलपमेंट जो है दैट इज क्लाइमेट चेंज, जिससे कि आप सारी साइंटिफिक कम्युनिटी यही कहती है कि आपका देश के देश क्लाइमेट चेंज जो है वो खत्म कर देगा। तो इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अब आप जो मेरा हुलिया आज की डेट में देख रहे हैं, आज से 28 साल पहले जब मैं यहां आया था तो मेरा ना तो हुलिया ऐसा था और ना मेरा आउटलुक ऐसा था। मैं तो टोटली वेस्टर्नाइज ज्यादा हो रहा था, फ्रेंकली टेलिंग यू, और उसका भी कुछ कारण था। उसका कारण यह था कि जो हिंदी फिल्में वगैरह ये सब हम लोग देखते थे, हमको स्टडी करते करते पता चल गया कि दे आर फॉलोइंग सर्टेन वेस्टर्न मॉडल्स। तो फिर लगा कि अगर ये लोग वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करते करते आज के दुनिया के सो कॉल्ड यंग जनरेशन के आइकन्स बन रहे हैं, तो व्हाई शुडंट आई फॉलो वेस्ट। आई स्टार्टेड फॉलोइंग वेस्ट। एंड एक टाइम ऐसा था कि जब मैं बिल्कुल भी हिंदी म्यूजिक सुनता ही नहीं था, जब मैं यहां पे आऊं मैं तभी की बात बता रहा हूं, टोटली वेस्टर्नाइज्ड, सारा वेस्टर्न सुनना और ड्रेस टोटली वेस्टर्न। आई मीन ये फटी हुई जीन्स का रिवाज अभी थोड़े मैं समझता हूं 7-8 साल से यहां पे हुआ है, लेकिन हम अपने टाइम में ये सारे काम करते थे और सिर्फ फटा हुआ ही नहीं रखते थे उस कपड़े को, जब तक कि वो सड़ नहीं जाएगा, उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी और उसको हाथ लगाने से वो चिपचिप नहीं होगा, तब तक हम वो कपड़ा पहनते ही नहीं थे। ऑल आइडियाज कमिंग फ्रॉम वेस्ट। लेकिन ये सब करते करते एक चीज जो पर्सनली एक्सपीरियंस की कि ये सारी चीजें बहुत थका रही हैं, तो फिर मेडिटेशन के बारे में भी पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते फिर हमको पता चला कि नहीं, हमको लाइफ में कभी मेडिटेशन करना जरूर है। ये मैं आपको बता रहा हूं अपनी 10th से लेकर 12th तक की कहानी। फिर जब यहां सेंटर पे आए तो फॉर्चुनेटली आई वॉज गाइडेड बाई वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादी रुक्मणी जी। तो यहां पर आते आते यहां की डेली स्टडी करते करते बिल्कुल आउटलुक ही चेंज हो गया। हमको उस टाइम रियलाइज हुआ कि हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं सिंपली अपने लिए ज्यादा दुख एक्यूमुलेट करने वाले पैकेजेस तैयार कर रहे हैं, अब जो कि नहीं करना है। तो ब्रह्मा कुमारीज वॉज एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म देन, जबकि मुझे लगा कि एक टाइम पे तो क्योंकि मन में सोच के रख लिया था, बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए थे, अपनी मेहनत प्रमाण नहीं आए थे, सोच लिया था कि किसी एजुकेशन मिनिस्टर का तो जाकर के मैं खून कर दूंगा, किसी दिन खून कर दूंगा। लेकिन यहां पर आया तो पता चला कि कैसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एंड नाउ आई एम रियली हैप्पी कि विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई एम एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स ऑल ओवर इंडिया। तो दैट वॉज वे बैक इन द ईयर 2006 और समथिंग की दादी जी ने हमसे कहा कि यू विल बी द जोनल यूथ विंग कोऑर्डिनेटर ऑफ दिल्ली। तो तब से एक नया आयाम खुल गया एंड जो माइंड के अंदर था कि यू हैव टू बी डिस्ट्रक्टिव, दैट परसेप्शन कंप्लीटली चेंज्ड। अच्छाई से ही अच्छाई को पैदा किया जा सकता है, दिस इज व्हाट। लेकिन अगर आपकी खुद की प्रैक्टिस के अंदर वो चीजें नहीं है देन यू वॉन्ट बी एबल टू। तो फिर हमें लगा कि भाई हमको भी कुछ आर्किटेक्ट्स के लिए भी करना चाहिए, सो वी डिड प्रोग्राम्स फॉर आर्किटेक्ट्स इन दिल्ली। लेट मी टेल यू कि आर्किटेक्ट्स की संख्या जो है वो इंजीनियर्स के मुकाबले आप देखेंगे शायद देश का जितने इंजीनियर्स हैं उससे 100वें हिस्से से भी कम आर्किटेक्ट्स आपको मिलेंगे। और इंजीनियर्स जितने होते हैं वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, आर्किटेक्ट्स के आपको स्टूडियो मिलेंगे 2, 3, 4, 5, कोई बड़ा स्टूडियो होगा ज्यादा 100 आर्किटेक्ट्स, इससे बड़ी आर्किटेक्चरल फर्म की साइजेस भी नहीं होती। बट स्टिल जब संकल्प किया था करना है तो किया। तो एक्चुअल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो आपके पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से ही होंगी। एंड सस्टेनेबिलिटी इट इज नॉट, दिस इज समथिंग विच कैनॉट बी फोर्स्ड ऑन एनीवन। दिस इज समथिंग विच वी अंडरस्टैंड कि इट इज अ रियलाइज्ड लर्निंग. आप करेंगे, गलत चॉइस के साथ चल रहे होंगे, गलती करेंगे, गलत रिजल्ट निकालेंगे, और ये रियलाइज करेंगे कि हाँ ये रिजल्ट गलत था, मेरी गलतियों से निकला है, देन यू चेंज. दिस इज व्हाट अ जनरल स्केच ऑफ रियलाइज्ड लर्निंग इज. एंड भगवान हमको इसी पाथ पर चलाता है. सो दिस इज हाउ वी बिलीव कि अ न्यू वर्ल्ड जिसके अंदर सस्टेनेबल सिस्टम्स होंगे उसका निर्माण खुद भगवान करता है, एंड वी कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट. ओम शांति.
सच में हमारे रोहित भाई साहब का बहुत सुंदर अनुभव कि परिवर्तन तो निश्चित है लेकिन हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं और कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये होती है. और स्पिरिचुअलिटी में वो ताकत है ना, आप सब भी महसूस कर रहे हैं कि ये ताकत है परिवर्तन करने की. और उसका उदाहरण हमारे रोहित भाई साहब सामने बैठे हैं. अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय भ्राता ओपी गोविंद लाल दरक जी को, डायरेक्टर ओम ग्रुप ऑफ कंपनी सोलापुर, वो भी आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे.
ओम शांति. सब ठीक है, स्वस्थ है, खुश है. बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर्किटेक्चरल. जो दीदी को बिल्डिंग क्या है ये मालूम नहीं था, वो दीदी ने उसको हैंडल किया और हमारे दोनों पार्टनर्स ने बहुत अच्छी तरह से अपनी अपनी बात रखी है. उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम अगर सोचते घर क्यों बनाते हैं, हम घर कब से बना रहे हैं. इनिशियली जब आदमी की शुरुआत हुई तो जंगल में रहता था, फिर हट में पत्ते लगा कर रहता था, वो सब सस्टेनेबिलिटी था डेवलपमेंट्स. फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते जो युग आया जिसके अंदर पत्थरों के अलग अलग हथियार बने गए, तो भारत में लोग आते थे कल्याण तक और वहां से वॉक कर जाते थे नासिक जलगांव वाया तेर तक. ऐसा रूट था उनका, ट्रेड रूट था. उस रूट में केव्स बनाते थे. ये जो केव्स है ना, एलोरा एलिफेंटा, ये सब केव्स जो है एक केव्स रहने के घर है उनके, सब लोगों के. पहले होटल्स नहीं थे, फोन गाड़ी रुका थी होटल में चले गए, कुछ भी नहीं था. 200 साल पहले क्या था हमारे पास, 300 साल पहले क्या था. ये डेवलपमेंट धीरे धीरे होते गया हुआ है. तो ये पीछे का थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच किसी ने नहीं लिया, वो मैंने कर दिया. जो पॉइंट नहीं लिए गए हैं उसको टच करूंगा मैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है, हम लोग घर क्यों बनाते हैं. चौथी पांचवी छठीवीं क्लास में सिखाया हम लोगों ने, ठंडी नहीं मिलनी चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए, बारिश नहीं आनी चाहिए और जोर से तेज हवा नहीं आनी चाहिए. बात खत्म. उसके लिए घर चाहिए. वो घर बनाने की जो सिस्टम है वो कैसा बनाना चाहिए, उसके ऊपर ये जो दो विद्वान लोग बैठे हुए हैं वो पूरा गाइड करके वो घर बना देते हैं. वो घर बनाने के लिए और क्या क्या जरूरत है, उस घर की रिक्वायरमेंट मैंने बोल दी. हवा पानी धूप से अपनी बचाव करना है अपने को. अब उसको ही पकड़कर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो वेद और विज्ञान दोनों का अनुसंधान करना पड़ेगा हम लोगों को, तब बढ़िया घर बन सकता है. सिर्फ वेद को पकड़ के नहीं चलेगा या सिर्फ विज्ञान को पकड़ के नहीं चलेगा. हमको जो दीदी ने बताया आज अपने को, कल परसों आज, उसको आगे बढ़ाते हुए उस घर में क्या क्या चाहिए, तो 5 प्रिंसिपल्स है उस घर में क्या चाहिए. जो आदमी उस घर में रहता है उसका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए. आप डिजाइन ऐसा करो घर कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए. बार बार बीमार पड़ रहे हैं, क्यों बीमार पड़ते हैं उसका अभ्यास करेंगे, बीमारी निकल सकती है उसमें से. दूसरा, मन शांत होना चाहिए उस घर में. तीसरा, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए. जो लोग रहते हैं उनके शरीर के रोम रोम में काम करने का उमंग और उत्साह बहुत बढ़िया होना चाहिए और उनके जीवन में सदैव आनंद मिलना चाहिए. यहां पे आने के बाद हमने देखा सिर्फ दीवारों से नहीं बना हुआ है, वाइब्रेशंस. दीदी ने सवेरे से शाम से, मैं परसों आया हूं 16 तारीख को, तब से अभी तक फर्स्ट टाइम ऐसा कोई समय है कि मैं गेट के बाहर नहीं गया, कंपाउंड के बाहर, कंपाउंड के अंदर ही रहा. और बहुत आनंद आया। क्यों? तो सिर्फ पत्थर से दीवार से नहीं बनाए हैं, इसके अंदर की बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है। तो पांच चीजें मैंने बताई, एक बार रिपीट करेंगे, शरीर स्वस्थ, मन शांत, बुद्धि स्थिर, शरीर के रोम रोम में काम करने का उमंग उत्साह, और आखिरी में अपने जीवन में सदैव आनंद। ये पांच चीजें घर में मिलनी चाहिए, और जो भी घर रहेगा वो खुश है अपन। वो झोपड़ा रहो, हिमाचल में रहो, भोपाल में रहो, भुवनेश्वर में रहो, किधर भी जाओ तो फर्क नहीं पड़ेगा, घर में का सिस्टम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टेक्निकली अगर देखते हैं तो अर्थ जियोडिक है, राउंड है बोलते हैं अपन, ऊपर से नीचे दब गई है, जियोडिक शेप है अर्थ का, थोड़ी सी हल्की सी दब गई है, टिल्ट है हल्की सी, जो रोहित भाई ने क्लाइमेटोलॉजी की बात की उसको ही थोड़ा सा टच करते हुए थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर का बेस क्या है। टिल्ट है, थोड़ी सी अर्थ टिल्ट है और खुद के प्रति घूमती है, और जो सूरज, अभी ये माइक सूरज है समझो, तो माइक के मतलब सूरज के बाजू में भी घूमती है, तो खुद का एक चक्कर पूरा करने के लिए खुद के प्रति 24 घंटे लगते हैं, हमको मालूम है दिन रात होता है, और पूरा एक चक्कर काटने के लिए 364.5 एडिशन करके 65-66 लीप ईयर नॉन लीप ईयर, हम सबको मालूम है, डीप नहीं जाएंगे, समय की पाबंदी है, कम समय में ज्यादा कुछ पॉइंट्स कवर करने हैं मुझे। तो आपको ये बाजू ये ध्यान में आ गया आपको कि अर्थ गोल है, घूमती है, खुद भी घूमती है, सूरज के बाजू में घूमती है, ये सब मूवमेंट्स के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं पृथ्वी के अलग अलग जगह के ऊपर। अपन भारत की बात करते हैं सिर्फ, तो अर्थ के दो पार्ट कर दिए, ऊपर बीच में से कट किया तो इक्वेटर हो गया सेंटर में, विषुव वृत्त, उसके ऊपर दो वृत्त हो गए, उसको वापस सेंटर में कट किया, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, ये सब 5th, 6th, 7th में पढ़े हम लोग बुक्स में, हमको मालूम है हम कहां पे है, पूरे वर्ल्ड में हम कहां पे है, विषुव वृत्त के थोड़ा सा ऊपर और कर्क वृत्त के नजीक, कर्क वृत्त के नजीक है। अगर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड रेखाओं सेक्शनों देखता हूं मैं, तो इंडिया वर्ल्ड मैप के ऊपर 9 डिग्री नॉर्थ को चालू होता है और 35 डिग्री नॉर्थ को एंड होता है। 9 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, जैसा हमारे भाई साहब ने बताया कि हमारे पास तो बहुत गर्मी होती है, 45 है, 45 सिर्फ आपके पास नहीं, भाई साहब अच्छे इंडिया में 45 घुस गया अभी, ऐसा कोई जगह नहीं रहा कि जहां पे 40+ नहीं जा रहा है। माउंट आबू जैसी जगह के ऊपर टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, ये तो टॉप पे है, ये परिस्थिति आई है, उसका रीजन क्या है उसके अंदर जाने के लिए ये सभा का उतना समय नहीं है, इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, समय नहीं है, हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात नहीं कर सकते। इसका एकमेव रीजन ऐसा हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होने के कारण, हर चीज में, नॉट ओनली इन घर, हर चीज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको ध्यान में आ गया, राउंड टिल्ट घूम रही है, एक चक्कर काट रही है, पूरा साल दिन कर रही है, टिल्ट हो गई है, और 9 डिग्री से 35 डिग्री तक अर्थ है। अब हम कहां बैठे हैं उसके हिसाब से सन का डायग्राम बनाना पड़ता है, इट इज कॉल्ड सन डायग्राम, और सन डायग्राम जब बन जाएगा तो उस डायग्राम के हिसाब से बिल्डिंग का प्लानिंग होता है हर जगह पे। अब सन डायग्राम के ऊपर पर्सनली मैंने 13.5 साल काम किया है। शॉर्टली किस्सा ऐसा है, मैं जब बीटेक कर रहा था तब सेकंड ईयर में हमको एक सब्जेक्ट था, सानिका बुक दिया सर ने और बोले आप प्लान बना के लेके आओ कल सवेरे, और सन डायग्राम थी पुणे की और मैं पढ़ रहा था सोलापुर में, तो मैंने सर को बोला है तो सोलापुर का नहीं है सन डायग्राम, मुझे पुणे का चाहिए, पुणे का नहीं चाहिए सोलापुर का चाहिए, या मैं पुणे में शिफ्ट करूं मुझे। तो 2 महीने तक कशिश चली, एचओडी प्रिंसिपल तक गया, प्रिंसिपल ने सर को पूछा आपको आता है क्या बनाने को, सर बोले मुझे नहीं आता, मैं 30 साल से यही पढ़ा रहा हूं, सोलापुर में सन डायग्राम पुणे की यूज कर रहा हूं मैं। तो सर ने बोला अभी सबमिशन करो आगे बढ़ो, और सर को बोला कि इसको काम को लगाओ, और मुझे उस सर ने वो बोलते ना जलस तैयार हो गई कि प्रिंसिपल के सामने नीचे देखना पड़ा, उस सर ने मुझे इतना तकलीफ दिया 13.5 साल तक, मेरा बी तो हो गया, बेटे को गया, एमटेक हो गया, लेकिन उसके पहले वो टीचर ने बहुत तकलीफ दिया। उसका फायदा ऐसा हो गया मुझे कि मैं 13 साल तक अलग अलग जगह पे ऊपर रहा टेरेस पे, और ट्रू नॉर्थ, मेरिडियन नॉर्थ, फिर सनराइज कहां होता है, कहां पे एंड होता है, देखो शॉर्टली अगर बोलूं मैं तो सूर्य उगता है पूरब में, आदित्य नमा बोलता है वेद उसको, घूमता है साउथ में तपाता है, इसलिए सब सोलर के अपने पैनल्स साउथ में होते हैं, यमाय नमा बोलते हैं, और शुक्र शुक्राय नमा वेस्ट में, अभी वेस्ट की एनर्जी है, वेस्ट में नीचे जा रहे हो तो शुक्राय नमा हो गया, आदित्य यम और शुक्र ऐसे तीनों में पूर्व दक्षिण पश्चिम, जब दक्षिण से वो तपता है ना तो उसके पूरे रेत जाते हैं नॉर्थ में, जो दीदी ने बताया ना नॉर्थ लाइट। तो सन सेट होने के बाद जो संधि काल होता है 30-40-45 मिनट्स, जो अपने को लाइट मिलता है वो नॉर्थ से मिलता है, क्लियर लाइट रहता है। ये जो ज्यादा हेवी लाइट है ना, लक्स बहुत ज्यादा हो गए, 300 लक्स काफी है हमारे लिए, उससे अगर ज्यादा लक्स हो गए तो रेडिएशन होता है, आंखें खराब होती है। इसलिए हम थोड़ा सा ये भी स्टडी करें सेंसिटिविटी डेवलपमेंट मध्य समय, कि सन का पाथ क्या है, ट्रैक क्या है, किधर तपा रहा है। अभी इधर अगर मैं बिल्डिंग बनाता था, उस बिल्डिंग में लाइट ही अंदर नहीं है, वे सन लाइट को अंदर लेने का नहीं है, वो गर्म करती है, उसको शेड ऐसा करो या उस बिल्डिंग का ओरिएंटेशन ऐसा करो कि जिसके कारण अंदर सन लाइट नहीं आवे। लाइट आनी चाहिए लेकिन सन की जो टेम्परेचर है, जो उष्णता है उसकी, वो अंदर नहीं आनी चाहिए, हीट नहीं आना चाहिए। सन की लाइट आनी चाहिए, हीट नहीं आनी चाहिए। इतना अगर बेस अपन रखते हैं तो काफी लंबा उसके अंदर फर्क आ सकता है। सिर्फ सन का हो गया, वैसे विंड के डायरेक्शन क्या है, विंड की मूवमेंट्स क्या है, रेन की मूवमेंट्स क्या है, कहां से विंड आता है इंडिया में, किधर से चलता है, वो सब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम पढ़ चुके हैं, हमको मालूम है, लेकिन समय के अंदर भूल गए हम, काफी बड़े हो गए और सब्जेक्ट ही नहीं आया वापस, तो ध्यान में नहीं आया। तो आर्किटेक्ट क्या काम करेगा, हवा कहां से आ रही है, लाइट कहां से आ रही है, धूप कहां से आ रही है, वगैरह वगैरह सब देखेगा। हमने उसका विश्लेषण कर 9 डिग्री से 35 डिग्री का पूरा वर्किंग किया, एक बुक बनाया, और क्लाइमेटोलॉजी का पूरा बुक ही बना हुआ है जो इंडिया में 4 जगह पे है, और उसके ऊपर से हजारों बिल्डिंग अभी बन चुकी है जो सस्टेनेबल डेवलप करती है, जिसके अंदर लाइट तो भरपूर आती है लेकिन हीट नहीं आती है। सिंपल बात है, मैं अगर 45 डिग्री में धूप में रुकता हूं तो बहुत तपती है, और वही एक पेड़ दिख गया और पेड़ के नीचे आकर रुक जाता हूं तो पेड़ मुझे बहुत सुकून देता है। वहां पे इतने धूप में, 45 डिग्री की धूप में भी पेड़ के नीचे सुकून मिलता है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसा हो सकता है ये होने का रीजन, जो पेड़ की जो सुकून छाव जो है, तो मेरी बिल्डिंग हमेशा अगर छाव में रहेगी और तपेगी नहीं तो अपने आप मुझे कूलनेस करेगी। नहीं तो होता क्या, कंक्रीट धीरे धीरे तपता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और रात में 9 बजे तक तपेगा पूरा, 6-7 बजे तक। जब बेडरूम में आप अंदर जाएंगे तो बेड पे आप जाएंगे 9, 9, 10, 11, तो 11 बजे से वो वापस ठंडा होने के लिए 4 बज जाते, तब तक आप तपते ही रहते उसके अंदर। फिर आप बोलते हो कि नींद नहीं आती है, फिर एसी लगाओ, हीट लगाओ, पसीना नहीं आएगा, किडनी खराब होगी, डिपेंड, सब चक्कर है। तो जो साइकिल है, उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को बहुत ध्यान देके काम करना पड़ेगा। हाउ टू डील विद ऑल एलिमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही कुछ भी डील कर दिया चलेगा नहीं। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है डिजाइनिंग के, सस्टेनेबल के? फर्स्ट डिजाइन इज फर्स्ट यूटिलिटी, फंक्शनल प्लानिंग चाहिए। मेरा घर बहुत ईजी होना चाहिए ना, अभी हॉल है, बाजू में पानी है, बुके रखा हुआ है, वहां पे लैपटॉप है, सब दिखता है और कंफर्टेबल है अंदर आना जाना, सो इट्स अ फंक्शनल प्लानिंग। मेरे किचन के बाजू में स्टोर है, वहीं के बाजू में हमारी महाराष्ट्र बैंक में काम करने वाली बहुत अच्छी हमारी दीदी है, कल शाम में मिले हम लोग, उनसे बात हो रही थी, बुद्धिमान है, औरंगाबाद से आई है। तो उनके घर में क्या किया उन्होंने, सवेरे उठ के क्या करती है, हम सभी दीदियां पहले उठेंगे, बेडरूम से बाहर आएंगे, क्या करते हम लोग, स्नान वान हो गई, उसके बाद स्टोर में से सामान निकालेंगे, किचन में रसोई बनाएंगे, डाइनिंग में खाना खाएंगे, यूटिलिटी में घर से को रख देंगे, हॉल में जाके टीवी देखेंगे, थक गए तो बेडरूम में सो जाएंगे। तो ग्रुपिंग करके अगर काम कर दिया, कैसा फंक्शन है वो हिसाब से अगर काम करते हैं तो डिजाइन करने के लिए मजा आएगा और रहने वाले को भी मजा आएगा, वो घर के अंदर उनको खुशी मिलनी चाहिए ना। नहीं तो वो स्टोर साउथ वेस्ट में रख दिया, साउथ ईस्ट के अंदर किचन कर दिया, वो 1 किलोमीटर, अभी घर छोटा है, फ्लैट है तो चलेगा, अगर बंगलो है 2 एकड़ में, स्टोर वहां से चलने के लिए 50 फुट चलना है, 100 फुट चलना है, तो रोज 4 गली देंगी वो आर्किटेक्ट को, अरे क्या डिजाइन बना दिया, स्टोर वहां भी बनाया, किचन वहां भी बनाया। तो आपने को बैलेंस करना है सब चीजों का, तब काम बढ़िया हो सकता है। तो इस प्रकार फर्स्ट यूटिलिटी, फंक्शनल प्लानिंग, सेकंड सेफ्टी, वो घर सेफ चाहिए। भाई बाबू का घर बना दिया, बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत अच्छा है, और जोर से हवा इन बाबू घर गिर गया तो अनसेफ घर रहेगा, तो कोई रहेगा नहीं। तो सेकंड फंक्शन इज सेफ्टी, थर्ड इज इकोनॉमी, सस्टेनेबल इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर अर्न मनी होती है, आप जिंदगी भर काम करते हो और फिर एक बार एक घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो हार्ड एंड मनी लगाने के लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबिलिटी में इकोनॉमी आती है, कैसे आएगी, लोकल मटेरियल यूज करो। IGTB क्या बोलता है, इट शुड नॉट बी लेस देन, मटेरियल कहां से चाहिए, 150 किलोमीटर के अंदर का मटेरियल चाहिए। हम लोग 500 किलोमीटर तक लेके आते हैं, बट इट इज रॉन्ग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेती होती है 100 रुपए की, लेकिन लाने के लिए 1000 रुपए लगता है उसको, डीजल भरना गाड़ी, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज वेरी वेरी लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम ट्रांसपोर्ट हो रहे, लोकल मटेरियल यूज किया जाए। हम दो वॉल्स, कैविटी वॉल्स, या मैंने अभी पर्टिकुलरली पेटेंट लिया है, हमने भी रखा है, जैसा इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड जो बॉन्ड होते थे रोज सर, वैसा एक बॉन्ड बनाया मैंने, ओम दरक बॉन्ड, मेरा खुद का एक बॉन्ड बनाया मैंने। 30 साल काम करते करते फील्ड में 9 इंच की दीवार बनानी की है, उस दीवार के अंदर कैविटी बना दी 9 इंच में ही, जो आपको एक वॉल बनाने के लिए इफ यू रिक्वायर्ड 1000 पिक्स फॉर वन ब्रास्ट, एवरेज पकड़ लो। तो ये बॉन्ड बनाते समय मुझे ब्रिक लगती है 680, 320 ब्रिक्स बच गई। यस एग्जैक्टली, तो वहां से वो ब्रिक बच गई, वेट कम हो गया, तो बीम डिजाइन जो करूंगा मैं, स्टील का वेट कम हो गया, स्ट्रक्चर का वेट कम हो गया, सब वेट कम होते होते ओवरऑल बिल्डिंग इकोनॉमी आ गई। इस प्रकार की बहुत सी चीजें हम सस्टेनेबल में कर सकते हैं। जैसे हम लोग मड के ब्रिक्स बना सकते हैं लोकली, हमारे भरत भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो पूरे इस एरिया के इंचार्ज है, बहुत काम करते हैं, हमारे प्रताप भाई बैठे हुए हैं, प्रताप भाई ने बहुत काम किया है यहाँ पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है। मैं लास्ट टाइम आया था, तब उनका पूरा डेवलपमेंट देख के आया मैं, और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एसटीपी लगाया है, ईटीपी लगाया हुआ है, सिर्फ ग्रे वाटर का अलग पाइप निकालते हैं, पाइप पानी बहुत है, ऊपर पानी बहुत पड़ता है, तो जहां पे बहुत पानी पड़ता है वहां पे पानी की स्कैर्सिटी नहीं होती, कीमत नहीं होती है, तो ग्रे वाटर से वो पानी वापस यूज कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लोरिडा के फिश के लिए यूज कर सकते हैं, दैट वाटर यूज फॉर कार वॉशिंग एंड एवरीथिंग, ये जो भी नंबर ऑफ चीजें अलग अलग है वो अपन कर सकते हैं। दीदी ने बहुत पहली स्लाइड बताई थी मट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना इसमें, उसको अपने को कंजर्वेशन क्या करना है, लैंड का, मट्टी का। हम क्रश सैंड बना सकते हैं लेकिन मट्टी बना नहीं सकते, मट्टी है ऊपर वाले दी हुई कृपा है। देखो कर्नाटक में लाल मट्टी है, इधर कुछ अलग मट्टी है, महाराष्ट्र में हमारा जो दक्षिण का ट्रैप है वहां पे ब्लैक बसाल्ट है, ग्रानाइट पूरा ग्रानाइट का एरिया इधर है, आपका राजस्थान के एरिया में पूरा सैंडस्टोन है जो ऊपर से प्रेशर आके सैंडस्टोन बन गया। तो पृथ्वी के पेट में क्या क्या है वो माँ को ही मालूम है, तो उस माँ का हम सब चीज तो निकाल के ले रहे हैं, उसको देख नहीं रहे हैं, तो सस्टेनेबल करने के लिए उसको देना भी जरूरी है। रोहित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि उसकी ऑथेंटिसिटी देखो, आदमी सही है गलत है, माइंड नहीं, ऑथेंटिसिटी ऑफ द आर्किटेक्ट, ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। तो कंक्लूड करते समय ये बात बता रहा हूं मैं, वो आदमी सही है गलत है, उसकी डिग्री है, उसके पास सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन सब दिखता है ऑनलाइन, अभी सब दुनिया मुट्ठी में आपके, तो कोई कुछ झूठ बोलने की सवारी नहीं है, एक बटन दबाया के सामने उसका चिट्ठा आ गया, तो उसके ऊपर सब आप देख सकते हो, वो देख के अपन बराबर काम करेंगे। अब हम लोग काफी समय ज्यादा हो चुका है, एंड की तरफ आ रहे हैं। लास्ट जो 4 पॉइंट बोले मैंने, फंक्शनल प्लानिंग, सेकेंड इज सेफ्टी, थर्ड इज इकोनॉमी एंड फोर्थ इज ब्यूटी। ब्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए, बिल्कुल करो लेकिन बहुत ज्यादा पैसा ब्यूटी में खर्चा नहीं करे। ये 4 पॉइंट हम पकड़कर हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी हेल्थ भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। यहां पे आया मैं, बहुत आनंद आया 2 दिन से, बहुत खुशी मिली। आप सब लोग कितने नंबर है इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थे एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत वंदन, आपके आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने बहुत शांति से सुना, प्यार से समझा, बहुत सी बातें हैं लेकिन समय का अभाव है। मैं अभी शाम तक इधर हूं, हम जैसे मिलेंगे अलग अलग समय के ऊपर शाम तक 9 बजे तक, तब कुछ और बात कर सकते हैं। अपनी शांति सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।